एहेस्केल अध्याय 33। अध्याय 33 में परमेश्वर बाबुल में प्रवासी बंदियों को निर्देश देता है। एहेस्केल अध्याय 33 पद 1 से लेकर 7 तक। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कह, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग किसी को अपना पहरुआ करके ठहराए, तब यदि वो ये देखकर इस देश पर तलवार चला चाहती है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे, तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर ना चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सर पड़ेगा। उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु ना चेता, सो उसका खून उसी को लगेगा, परंतु यदि वो चेत जाता तो अपना प्राण बचा लेता। परंतु यदि पहरुआ ये देखने पर कि तलवार चला चाहती है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को ना चिताए और तलवार के चलने से उनमें से कोई मर जाए, तो वो तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं पहरुए ही से लूंगा। इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इसराइल के घराने का पहरुआ ठहरा दिया है। तू मेरे मुंह से वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। परमेश्वर एहेस्केल को उत्तरदायित्व प्रदान कर रहा है कि वो उसका वचन बाबुल में इसराइली बंधुओं तक पहुंचाए। वो उसकी तुलना एक रक्षक से करता है कि वो संकट देखता है तो चेतावनी का नरसिंगा फूंकता है। उसका उत्तरदायित्व यही पूरा हो जाता है। अब लोग चाहे जैसा करे, उसका उत्तरदायित्व पूरा हुआ। उसका काम था चेतावनी देना। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे पहरुआ बनाया है, यदि तू उन्हें सतर्क नहीं करेगा तो मैं तुझसे लेखा लूंगा, यदि तू उन्हें सतर्क कर देगा तो वे अपने उत्तरदायी स्वयं होंगे। हम भी परमेश्वर द्वारा नियुक्त पहरुए हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम लोगों को चेतावनी दे दें, शेष निर्णय उनके अपने ऊपर छोड़ दें, ना तो उनके साथ विवाद करें, ना बाध्य करें और ना उन पर जोर डालें। गवाही देने से अधिक आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे बड़ा विचित्र लगता है कि कुछ लोग तो आपकी गवाही के भूखे प्यास से होते हैं और कुछ एकदम बहरे, उन पर प्रभाव ही नहीं होता। इससे मुझे बोध होता है कि वास्तविक काम पवित्र आत्मा का है, कि पवित्र आत्मा उन्हें राजी करे और उन्हें मसीह यीशु की ओर आकर्षित करे। मेरा तो काम केवल नरसिंगा फूंकना है। प्रभु शीघ्र आने वाला है, आगे आपकी इच्छा। परमेश्वर ने एहेस्केल से कहा, तेरा एक ही उत्तरदायित्व है, उन्हें मेरा संदेश दे दे बस, तब वे जो भी करे वे जाने। मेरा वचन उन्हें देना तेरा उत्तरदायित्व है, नहीं तो मैं तुझे पकड़ूंगा। एहेस्केल अध्याय 33 पद 8 और 9। यदि मैं दुष्ट से कहूं, हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार के विषय ना चिताए तो वो दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय चिताए कि वो अपने मार्ग से फिरे और वो अपने मार्ग से ना फिरे, तो वो तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। एहेस्केल की पुस्तक अध्याय 3 में परमेश्वर ने उसे इसी काम के लिए कहा था। एहेस्केल अध्याय 33 पद 10। फिर हे मनुष्य के संतान, इसराइल के घराने से ये कह, तुम लोग कहते हो, हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है और हम उसके कारण गलते जाते हैं। हम कैसे जीवित रहें? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि हम पर अपने अपराधों और पापों का बोझ हो तो हम जीवित कैसे रहें? एहेस्केल अध्याय 33 पद 11। सो तू उनसे ये कह, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इसराइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? यहां हम परमेश्वर के मन को देखते हैं। परमेश्वर कठोर है, निर्दयी है और दंड देकर प्रसन्न होता है। यही विचार शैतान ने युगों से मनुष्य के मन में बैठा रखे हैं। सत्य तो यह है कि परमेश्वर दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, वो तो पुकार पुकार कर उन्हें अवसर देता है। लोग कहते हैं, प्रेम करने वाला परमेश्वर किसी को नरक में कैसे डाल सकता है? ये शिकायत गलत है। बाइबल कभी नहीं कहती कि परमेश्वर ने किसी को नरक में डाला है। सत्य तो यह है कि मनुष्य नरक के मार्ग में परमेश्वर के समस्त अवरोधों को पार करके स्वयं वहां जाता है। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है, वो नहीं कहता है कि हम बाध्य होकर उससे प्रेम करें, उसकी सेवा करें। परमेश्वर मुझे अपने राज्य में लाने के लिए मेरी इच्छा के विरुद्ध नहीं चलता है। यदि मैं परमेश्वर के हरेक कार्य का, उसके प्रावधानों का, उसके अनुग्रह की आत्मा का त्याग करके उसके पुत्र को पैरों तले रौन दूं और उसके लहू को निरार्थक कहूं तथा विद्रोह करता जाऊं, तो मैं नरक में जाऊंगा। परंतु ये संसार की सबसे कठिन यात्रा है। नरक जाना आसान नहीं है। आपको मसीह यीशु के ऊपर पैर रखकर वहां जाना होता है, क्योंकि वो आपके मार्ग में बैठा आपको रोकता है। परमेश्वर कहता है, तुम अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? उन्होंने विनाश का मार्ग अपनाया हुआ था, वे अपने अपराधों और पापों में मगन थे। परमेश्वर उन्हें पुकार रहा था कि वे मन फिराए। एहेस्केल अध्याय 33 पद 12 से लेकर 16 तक। और हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से ये कह, जब धर्मी जन अपराध करें तब उसका धर्म उसे बचा ना सकेगा, और दुष्ट की दुष्टता भी जो हो, जब वो उसे फिर जाए तो उसके कारण वो ना गिरेगा, और धर्मी जन जब वो पाप करे तब अपने धर्म के कारण जीवित ना रहेगा। यदि मैं धर्मी से कहूं कि तू निश्चय जीवित रहेगा और अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे, तब उसके धर्म के कामों में से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। जो कुटिल काम उसने किए हो वो उन्हीं में फंसा हुआ मरेगा। फिर जब मैं दुष्ट से कहूं तो निश्चय मरेगा और वो अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, अर्थात यदि दुष्ट जन बंधक फेर दे, अपनी लूटी हुई वस्तुएं भर दे और बिना कुटिल काम किए जीवनदायक विधियों पर चलने लगे, तो वो ना मरेगा, वो निश्चय जीवित रहेगा। जितने पाप उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। उसने न्याय और धर्म के काम किए और वो निश्चय जीवित रहेगा। क्या ये महिमा की बात नहीं है कि परमेश्वर आपके बीते हुए पापों को स्मरण नहीं करेगा, क्योंकि आप मसीह यीशु में आ चुके हैं। ये पुस्तक अनुग्रह के युग से पूर्व व्यवस्था के युग में लिखी गई है, परंतु सत्य तो ये है कि अनुग्रह के कारण परमेश्वर हमारे पापों को स्मरण नहीं करेगा। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हमें पापों की क्षमा प्राप्त है। एहेस्केल अध्याय 33 पद 17। तो भी तुम्हारे लोग कहते हैं प्रभु की चाल ठीक नहीं। कितनी बार हम लोगों को ये शिकायत करते हुए सुनते हैं, परमेश्वर अन्याय करता है। एक प्रेमी परमेश्वर ये कैसे कर सकता है? ये परमेश्वर की निष्पक्षता को चुनौती है। इसराइली भी यही कहते थे, यहोवा की चाल ठीक नहीं। परमेश्वर ने एहेस्केल से कहा, उनसे कह। एहेस्केल अध्याय 33 पद 17 से लेकर 20 तक। परंतु उन्हीं की चाल ठीक नहीं, जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे, तब निश्चय वो उनमें फंसा हुआ मर जाएगा। और जब दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तब वो उनके कारण जीवित रहेगा। तो भी तुम कहते हो कि प्रभु की चाल ठीक नहीं। हे इस्राएल के घराने, मैं हरेक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल ही के अनुसार करूंगा। अब ये बताता है एहेस्केल अध्याय 33 पद 21। फिर हमारी बंधुआई के 11वें वर्ष के 10वें महीने के 5वें दिन को, अब हम एक बड़े रोचक परिदृश्य में प्रवेश कर रहे हैं। एहेस्केल अध्याय 33 पद 21 में आगे लिखा है, एक व्यक्ति जो यरूशलेम से भागकर बच गया था, वो मेरे पास आकर कहने लगा, नगर ले लिया गया। यरूशलेम के विनाश को एक वर्ष हो गया था, परंतु वो व्यक्ति जो बच निकला था एहेस्केल के पास पहुंचा और उसे समाचार सुनाया। एहेस्केल अध्याय 33 पद 22। उस भागे हुए के आने से पहले सांझ को यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई थी, और भोर तक अर्थात उस मनुष्य के आने तक उसने मेरा मुंह खोल दिया, सो मेरा मुंह खुला ही रहा और मैं फिर गूंगा ना रहा। आपको ध्यान होगा कि परमेश्वर ने कहा था कि एहेस्केल यरूशलेम के पतन का संदेश पाने तक तू गूंगा रहेगा। अब संदेश आते ही परमेश्वर ने उसकी आवाज खोल दी। एहेस्केल अध्याय 33 पद 23 और 24। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इसराइल की भूमि के उन खंडरों के रहने वाले ये कहते हैं, इब्राहिम एक ही मनुष्य था तो भी देश का अधिकारी हुआ, परंतु हम लोग बहुत से हैं, इसलिए देश निश्चय हमारे ही अधिकार में दिया गया है। परमेश्वर एहेस्केल से कहता है, नबुकदनेज़र ने इसराइल वासियों को जीतने के बाद भी उन पर गदलिया को हाकिम नियुक्त किया, परंतु उनमें अब भी विद्रोह की आत्मा है। वे कहते हैं इब्राहिम एक ही मनुष्य था तो भी देश का अधिकारी हुआ, परंतु हम लोग बहुत से हैं, इसलिए देश निश्चय हमारे ही अधिकार में दिया गया है। परमेश्वर एहेस्केल को बता रहा है कि यरूशलेम के बचे हुए लोगों का स्वभाव कैसा है। यरमिया उन्हीं के बीच था और वो उनसे कहता रहता था कि नबुकदनेस्सर का विरोध मत करो, अन्यथा खदेड़े जाओगे, परंतु वे उसकी सुनते ही नहीं थे। एहेस्केल अध्याय 33 पद 25। इस कारण तू उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तुम लोग जो मांस लहू समेत खाते और अपनी मूर्तों की ओर दृष्टि करते और हत्या करते हो। वे कहते थे कि इसराइल देश हमारा है, इब्राहिम अकेला ही था, परमेश्वर ने उसे ये देश दिया, हम तो अनेक हैं, अतः ये देश निश्चय ही हमारा है। परमेश्वर की शिकायत यह है कि वे पशुओं को इस प्रकार से मारते थे कि उनका लहू बह नहीं पाता था और मांस में ही रहता था। व्यवस्था में परमेश्वर ने मांस के साथ लहू खाना मना किया था। दूसरी कि वे मूर्तियों की पूजा करते थे। तीसरी वे हत्या करते थे। यही कारण है कि परमेश्वर ने उनको संदेश भेजा। एहेस्केल अध्याय 33 पद 25 में आगे लिखा है, फिर क्या तुम उस देश के अधिकारी रहने पाओगे? तुम मेरी व्यवस्था का उल्लंघन करते हो, क्या मैं तुम्हें प्रतिज्ञा के देश में बसने दूंगा? एहेस्केल अध्याय 33 पद 26। तुम अपनी अपनी तलवार पर भरोसा करते और घिनौने काम करते और अपने अपने पड़ोसी की स्त्री को अशुद्ध करते हो, फिर क्या तुम उस देश के अधिकारी रहने पाओगे? परमेश्वर कहता है, तुम अविश्वसनीय हो, मुझे विश्वास नहीं होता। एहेस्केल अध्याय 33 पद 27 से लेकर 30 तक। तू उनसे ये कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरे जीवन की सौगंध निस्संदेह जो लोग खंडरों में रहते हैं वे तलवार से गिरेंगे, और जो खुले मैदान में रहता है उसे मैं जीव जंतुओं का आहार कर दूंगा, और जो गड्ढों और गुफाओं में रहते हैं वे मरी से मरेंगे, और मैं उस देश को उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा, और उसके बल का घमंड जाता रहेगा, और इसराइल के पहाड़ ऐसे उजड़ेंगे कि उन पर होकर कोई ना चलेगा। सो जब मैं उन लोगों के किए हुए सब घिनौने कामों के कारण उस देश को उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। और हे मनुष्य के संतान, तेरे लोग भीतों के पास और घरों के द्वारों में तेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। परमेश्वर ने एहेस्केल से कहा, वे अब भी तेरी चर्चा करके कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। एहेस्केल अध्याय 33 पद 31। वे प्रजा की नाई तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। वे तेरी चर्चा करके कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। वे प्रजा की नाई तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। याकूब अपनी पत्री में लिखता है, याकूब अध्याय 1 पद 22। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। आज मनुष्य अपने आप को बहुत धोखा दे रहा है। वो सोचता है, मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं, मैं परमेश्वर के वचन को सुनता हूं, मैं परमेश्वर के वचन को जानता हूं, परंतु ये सार्थक नहीं। क्या आप उसके अनुरूप आचरण करते हैं? परमेश्वर उनसे शिकायत करता है कि वे एहेस्केल के पास आकर परमेश्वर का वचन खोजते थे, परंतु अपने मन की लालसाओं के कारण उसका पालन नहीं करते थे। एहेस्केल अध्याय 33 पद 32। और तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाले सा ठहरा है, उनको तेरी वाणी सुनने में आनंद आता है। एहेस्केल अध्याय 33 पद 32 में आगे लिखा है, अच्छे बजाने वाला सा ठहरा है, वे तेरे पास मनोरंजन के लिए आते हैं। एहेस्केल अध्याय 33 पद 32 और 33। क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो है, परंतु उन पर चलते नहीं। सो जब ये बात घटेगी, और वो निश्चय घटेगी। जब यहोवा ऐसे शब्दों का प्रयोग करे तो मान ले कि उसकी बात अटल है। एहेस्केल अध्याय 33 पद 33 में आगे लिखा है, तब वे जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता आया था। अभी तो वे तुझे अपने मनोरंजन का साधन समझ रहे हैं, परंतु जब ये बातें सच होगी तब वे जान लेंगे कि तू सच्चा भविष्यद्वक्ता है। आज कितने लोग परमेश्वर के भवन में मनोरंजन के विचार लेकर जाते हैं। उनके लिए आराधनालय एक सामाजिक समागम का स्थान है जहां उन्हें मौज मस्ती मिलेगी, और इससे बड़े दुख की बात तो ये है कि कलीसियाई प्रबंधक भी उनके लिए यथोचित मनोरंजन का प्रबंध करता है। मैंने एक बैप्टिस्ट कलीसिया के पास्टर की कहानी सुनी थी। ये कहानी अन्य चर्च में भी घटित होती होगी। वो एक दिन अपने सहायक पास्टर लोगों के पास आकर बोला, दोस्तों आज हमारी प्रबंधन समिति की बैठक है और वो अगले साल के लिए हमारे वेतन पर चर्चा करेगी। हमें हमारे बजट में वैसे ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, अतः हमारे वेतन में वृद्धि के विषय में चुप रहेंगे। अतः हमें आज पूरा दिन प्रार्थना में बिताना है कि परमेश्वर कोई चमत्कार करे, अन्यथा वेतन वृद्धि के अभाव में हमारा आने वाला वर्ष दुखदायी रहेगा। प्रार्थना कीजिए कि हमें वेतन में वृद्धि दी जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि प्रार्थना को प्रभावी रूप देने के लिए धार्मिक मंत्रोच्चरण भी किए जाएं। अब सहायक पास्टर प्रार्थना करता है, हे प्रभु, तू तो जानता है कि $15,000 वार्षिक आय से क्या खर्चा चलता है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रबंधन समिति की बैठक में मेरे वेतन वृद्धि पर ध्यान दिया जाए। तब पास्टर ने प्रार्थना की, हे प्रभु, $22,000 वार्षिक वेतन से क्या होता है, जबकि मेरे कितने बिल चर्च ने नहीं दिए हैं, अतः प्रभु मुझे वेतन में वृद्धि प्रदान करे। तब संगीत निर्देशक ने प्रार्थना की, प्रभु, $55,000 वार्षिक बजट कितना कठिन है। प्रभु, तू तो जानता है कि राग रंग कार्यक्रम कितना जरूरी होता है। कलीसिया में राग रंग कार्यक्रम जैसा और कुछ है ही नहीं। ये उन कलीसियाओं का अपराध है जो ये सोचती है कि राग रंग कार्यक्रम द्वारा जन समूह को आकर्षित किया जा सकता है। ये वे लोग हैं जो कर्ण लोभी है और किसी दृढ़ धार्मिक शिक्षा सिद्धांत पर आधारित नहीं होते हैं। आज अनेक कलीसियाओं में ऐसा हो रहा है। इसी प्रकार वे भी एहेस्केल के पास आते थे कि उसकी आवाज में मिठास है और वो साज भी अच्छा बजाता है, चलो उसी के पास बैठते हैं। अतः वे अधिकतर एहेस्केल के पास बैठ जाते थे और सुनते थे, परंतु उसके कहे अनुसार करते नहीं थे। परंतु जिस दिन तेरे द्वारा सुनाई गई मेरी भविष्यवाणियां पूरी होंगी, उस दिन वे जान लेंगे कि उनके मध्य मेरा भविष्यद्वक्ता रहता था।